नाश्ता बगैर तले हुए अंडे का नहीं होता है।
जी 100% दुरुस्त, 100% दुरुस्त। आओ हुदा बेटी, आओ बैठो, अभी तला हुआ अंडा भी तैयार हो जाएगा। तो मैं तुम्हारी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि उसी वक्त हाजी हबीब के साथ ये तय पाया था कि दो अफराद मुअय्यन किए जाएं ताकि हम कभी कभार उन दोनों को माली उमूर की रिपोर्ट पेश करें, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल
अहमद अली कह रहे थे कि बागात की जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं, इनको बेचकर कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते?
नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक फर्ज था जो हमने अदा किया और अदा करते रहेंगे। दूसरे ये कि इस जायदाद को बेचा नहीं जा सकता।
क्या मैं एक सवाल कर सकती हूँ?
तुम यहाँ आई हो सवाल करने के लिए और हम भी हाजिर हैं उनका जवाब देने के लिए।
मेरी माँ ने मेरे अब्बू के वफात के बाद जमीनों के मुतालिक आपसे कोई बात नहीं की?
मसलन किस तरह की बात?
कोई भी बात?
नहीं, हत्ता के मैंने कई मर्तबा चाहा कि उनको माली उमूर की रिपोर्ट दे दूं तो उन्होंने कबूल नहीं किया। मैं कहता हूं कि तुम रोटी और पनीर के साथ शुरू करो, तब तक तले हुए अंडे भी आ जाएंगे। लो शुरू करो।
सलाम मम्मी जान। सुबह खैर बेटी।
आपको सुबह खैर, कैसे खुशबू फैलाई है?
मैं तले हुए अंडे बना रही हूँ, तुमने नाश्ता तो नहीं किया ना? तुम सहन में जाओ, मैं ये चीजें लेकर अभी आती हूँ।
मदद नहीं चाहिए?
नहीं बेटी, मैं सब कुछ ले गई हूँ, सिर्फ तुम खुद जाओ, मैं अभी आती हूँ।
ठीक है। अच्छा, सलाम।
सलाम।
सलाम बेटी, आओ बैठो, आओ बैठो, नाश्ता करो।
बहुत शुक्रिया अब्बा हुजूर, मुझे काम है, मुझे जाना है।
नाश्ते के दो लुक्मे तुम्हारे काम में हर्ज पैदा नहीं करेंगे, आओ बैठो।
मुझे जल्दी है, मैं आई थी कि सलाम करके चले जाऊँ। इजाजत दें, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज बेटी, खुदा हाफिज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नजमा बेगम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
सलामत रहिए।
लो बेटी।
शुक्रिया।
लो, मुझे नहीं मालूम कि आइंदा के लिए तुम्हारा प्रोग्राम क्या है, लेकिन तुम यहाँ रहोगी तो हम बाज़ औकात मसलन 3 महीने में एक मर्तबा माली रिपोर्ट भेज देंगे ताकि तुम जायज़ा लो। अगर खुद ये काम नहीं कर सकती हो तो अपना कोई वकील मुकर्रर कर सकती हो।
मुझे आप पर एतमाद है आगा साहब, आपने सईद के साथ मेरी शादी के मसले में मुझ पर जो मेहरबानी की थी, मैं उसको नहीं भुला सकती हूँ।
ये जो तुमको मुझ पर एतमाद है, इस पर मैं मशकूर हूँ, लेकिन इन मौकूफात पर निगरानी अपनी जगह पर कायम है। मेरी तजवीज़ ये है कि तुम मायदा को अपनी वकील मुकर्रर करो।
दरअसल वो
हकीकत यह है कि अगर इस अरसे में मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के दरमियान ताल्लुकात के सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया था तो उसकी वजह ये थी कि मैं सोचता था कि इस मुख्तसर मुद्दत में तुम दोनों के ताल्लुकात में तरमीम नहीं हो सकती है, लेकिन जब से तुम वापस आई हो मैं समझ गया हूँ तुम्हारे दिल में अपनी बेटी के लिए जगह है। खैर है, इंशाल्लाह बेटा नेमत है और बेटी रहमत। दीजिए इनको, दीजिए।
मजीद
जी। हाजी साहब,
जरा हाजी मसूदी की दुकान पर चले जाओ
जी,
देखो दुबई वाली खेप की क्या इत्तला है।
जी अच्छा, स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी की पेशगी रसीद का ईमेल भी आ गया है।
मेरे लिए इसका प्रिंट भी निकाल कर ले आओ।
ले लिया है, यहाँ है, ये है।
ठीक है ठीक है, जाओ।
जी
मोहम्मद हुसैन, देखो मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।
हम आपको जहमत नहीं देना चाहते थे।
जी हाँ, जहमत नहीं देना चाहते थे, लेकिन तुमने मेरी इज्जत और आबरू का ख्याल नहीं रखा। मैं समझता हूँ जिसको मामले का इल्म नहीं है वो सिर्फ हाफिज शिराजी हैं और मैं हूँ। अपना सर ऊपर उठाओ अरश। काम यहां तक पहुंचे कि मुझे हाजी शहीदी साहब से पता चले कि मामला क्या है। मजदूरों के साथ गुत्थम गुत्था होते हो, खून बहाने की नौबत तक आती है, आखिर मतलब क्या है इसका? मैंने तुम्हारे साथ कौन सा बुरा सुलूक किया है जो मुझसे भागते फिरते हो?
नहीं अब्बू, मोहम्मद हुसैन का इसरार था कि आपको कुछ ना बताऊं।
क्यों मोहम्मद हुसैन?
दरअसल हमने कहा कि अगर हम अपने पांव पर खड़े हो जाएं तो बेहतर है ना। हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते थे अगर मुरादी साहब हमें धोखा ना देते और हमारा साथ दे देते।
क्या किया मुरादी साहब ने?
कुछ नहीं अबू, जिस दिन से चेक की मियाद खत्म हो रही थी सुबह से फोन पर फोन किए जा रहे थे। लगता था हम इनके पैसे खा जाएंगे। ऐसे कर रहे थे जैसे इनका कोई यहाँ से वास्ता ही नहीं है।
मिर्जाई साहब, भाई मैंने खुद लोगों को चेक दे रखे हैं।
ये बंदे खुदा सही कह रहे हैं, तुम लोगों को अपना हिसाब किताब सही रखना चाहिए ना। ये अच्छा है कि तुम लोग अपने पांवों पर खड़े रहना चाहते हो, लेकिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि इस मामले में मीरजाई और शहीदी के दो खानदानों की इज्जत का भी सवाल है।
आप परेशान ना हो, मैंने दाऊद साहब से कह दिया है कि कंपनी से हम दोनों के बाप का कोई ताल्लुक नहीं है।
अच्छा, माफ करना, अगर ताल्लुक नहीं था तो कोई भी तैयार हो जाता तुम्हारी कंपनी में 2 रियाल की भी सरमायाकारी करने को। कौन 2 नातजुर्बेकार नौजवानों पर एतमाद करता। सईदी ने कब लोन का बंदोबस्त करने के लिए कहा है?
तकरीबन 1 महीने बाद।
तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं?
जी।
अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक ले जाना, मैं तुम्हारी जमानत दे दूंगा। उसके बाद अगर कोई मसला पेश आए तो मुझे बता देना। अर्श
जी,
मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर कुछ फाइलें रखी हुई हैं, जाकर ले आओ।
आपकी बड़ी मेहरबानी अब्बू।
मोहम्मद हुसैन बेटे, मैं तुमसे इल्तजा करता हूँ, अर्श को इससे ज्यादा आगे मत बढ़ने दो। भाई इतने बड़े काम में मजदूर के साथ कोई गुत्थम गुत्था होता है क्या?
नहीं, गुत्थम गुत्था तो नहीं हुआ था, सिर्फ थोड़ा सा इख्तलाफ पेश आया था, उसने कोई बात कह दी थी।
बस,
और फिर...
अब जो भी हुआ हो मुझे कोई सरोकार नहीं। बहने, कई मर्तबा कहा भी है लेकिन लगता है तुमने संजीदगी नहीं दिखाई। आरश को इस मामले में मत पढ़ने दो।
जी बेहतर, आप सलामत रहें।
हेलो, बताओ। हाँ हाँ, सही कहा, वो यहीं पर है। नहीं, हमारा ध्यान तुम्हारे लोन की तरफ था, माफ करना। हाँ, आ जाओ। समझ गए ना मैंने क्या कहा? बस यहीं तक, इसी हद तक।
अब ये कबाब किस खुशी में बनाए जा रहे हैं?
आपसे माफी मांगने के लिए।
अच्छा, इस काम को किसी तातील के दिन कर देते ताकि मैं भी कबाबों से अपना हिस्सा ले सकता। तुम्हें तो मालूम है कि मैं रातों को हल्का फुल्का खाना खाता हूँ। अच्छा, माफ़ी किस लिए?
मेरी सख्त मिजाजी से मुतालिक। दरअसल उस दिन मैं थोड़ा गुस्से में था, इस हद तक कि कर्जा और लोगों के दबाव का मेरे ऊपर बोझ था जिससे मेरा मूड ख़राब हो गया था। माफ़ कीजिएगा।
मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में परेशान हूँ।
आज मैं दाऊद साहब के पास था, मैं समझ गया कि आपने उनसे बात की है।
मैंने देखा कि वो कारोबार के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं, तो उनसे चाहा तुम लोगों का ख्याल रखें।
सच पूछे तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता था कि दाऊद साहब से मदद मांगू। यानी कि मुख्तसर यह कि मुझे गवारा नहीं होता था ना, लेकिन देखा कि इस मामले में इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है।
इसका मतलब क्या है? आखिर तुमने किया क्या है?
कुछ नहीं ना, बस तय पाया है कि वो हमारे लोन के जमानत दहिंदा बन जाएंगे। बहरहाल अब्बा हुजूर, आपने जो मुझ पे मेहरबानी की है इस सिलसिले में आपका मशकूर हूँ। ये जो आपको मेरा ख्याल है यही काफी है।
मैं सिर्फ ये चाहता था कि दाऊद साहब तुम्हारी मदद करें, फिक्री लिहाज से मदद करें, ना कि ये कि तुम्हारे लोन की जमानत दें। दरअसल उस लोन में परेशानी थी इसलिए मैं मुखालिफ था।
कोई और चारेकार नहीं था अब्बा हुजूर। इस लोन के जरिए हम कम अज कम घरों की तामील करके लोगों के हवाले कर सकते हैं।
तुम्हें मालूम है मुझे किस बात की परेशानी है? जानते हो हुब्बे जा और बुलंद हिम्मती के दरमियान क्या फर्क है? हुब्बे जा इंसान को बर्बाद कर देती है। मैं तुम्हारे बारे में परेशान हूँ, तुम जो काम करते हो उनका ध्यान रखने की जरूरत है।
जा पसंदी नहीं है अब्बा हुजूर। बहुत से लोग इस इंतजार में हैं कि आप नुमा तकमील को पहुंचे और घर के मालिक बन जाए, वो अच्छी खासी उम्मीद रखते हैं।
मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम लोगों से खुलकर कह दो इस मंसूबे को पाए तकमील तक नहीं पहुँचा सकते हो। जिन घरों को तुम मुकम्मल कर सकते हो उनको मुकम्मल कर लो, बाकियों के पैसे नुकसान के साथ लोगों को वापस कर दो।
अब्बा हुजूर, इस तरह हमारा और कंपनी दोनों का एतबार यकजा होकर बर्बाद हो जाएगा।
अगर सदाकत हो तो अपनी जगह पर तुम लोगों के लिए एतबार ला सकते हो।
आप जानते हैं क्या अब्बा हुजूर, मैं बाज़ औक़ात अपने ते ही सोचता हूँ, अगर मुर्तज़ा भी शहीद ना हुए होते आप मेरे बारे में इतना ज्यादा हसास ना होते, इस हद तक मेरे ऊपर दबाव नहीं होता।
कैसी खुशबू फैला रखी है, बाप बेटे तन्हाई में बैठे हैं। मोहम्मद हुसैन, मेरे चूल्हे का बर्नल खराब हो गया, जल बुझ रहा है, जाकर देखो ना, मेरा चावल गीला हो गया।
तुम इनका ख्याल रखो, देखो जल ना जाए, मैं देखता हूँ।
अब्बा हुजूर, हुदा साहिबा को आपसे क्या काम था?
हुदा साहिबा से मतलब तुम्हारी माँ से है?
जी।
मुझे खुशी हुई कि तुम उन कामों में दिलचस्पी लेने लगी हो जो तुम्हारी माँ अंजाम देती हैं।
मैं दिलचस्पी नहीं ले रही, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया।
अहमद अली आए थे कि उनको ले जाकर बागात दिखाएं और ये दिखा दें कि मामलात कैसे चल रहे हैं, बस यही।
कब तक रुकेंगी?
उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा।
क्या ये कबाब तैयार नहीं हुए?
क्यों नहीं, आप दस्तरखान बिछा दें, मैं कबाब ले आता हूँ।
ये लीजिए।
ठीक है। रहो मेरी प्यारी बेटी मायदा। मायदा बेटी
जी,
मैं चाहता हूँ तुम एक काम करो, तुम्हें जहमत तो होगी।
फरमाइए।
मैं तुमसे अभी कहता हूँ।
बिना फैसले के छोड़ दिया, क्या मतलब?
मतलब वो खुद भी नहीं जानता कि उसे करना क्या है।
बरात अली ना मदरसा जाता और ना ही मामा लगाता है। अब्बा हुजूर ने कहा है कि मैं तुमसे आकर पूछ लूं, बिलाखिर वो करना क्या चाहता है।
मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि अब्बू के पास गया था लेकिन उन्होंने मना नहीं पाया।
ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
कैसे ठीक हो जाएगा?
अब्बा हुजूर बरात अली को बहुत चाहते हैं, वो यकीनन उनके लिए कुछ करेंगे ना। जरा ये बताओ कि तुम्हारी अपनी राय क्या है, तुम चाहती हो वो तलबा बन जाए या नहीं?
जाहिर है कि मैं चाहती हूँ। मैंने पहले ही शर्त रख दी थी कि उसको तलबा भी रहना है और हमेशा लिबास भी पहने रहना है।
इस तरह तो हालात जरा बिगड़ जाएंगे।
मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा मायदा।
यानी मैं इस हद तक अजनबी हूँ अहमद अली साहब?
आगा साहब, मुझे पता नहीं मैं आपकी खिदमत में किस तरह एतराफ करूँ। आप अपने आप को मेरी जगह पर रख दें और मैं आपकी खिदमत में आकर बैठ जाऊँ और कह दूँ कि मेरे बेटे ने इतने ज्यादा जराबा जराबू करने के बाद अपने ईमान को बेवकत चीजों के इवज बेच दिया है।
बरात अली मेरा शागिर्द है, मुझे उसके दिल के हाल से मुत्तला रहना चाहिए था। बाकी तलबा क्या उनको इसके बारे में इत्तला नहीं है?
मुझे नहीं मालूम।
इस तरह मोमिन मोमिन का ख्याल रखता है। अब बताएं कहाँ है बरात अली?
इन कुछ दिनों में बज़ाहिर तो वो एक बार भी नज़र नहीं आया, लेकिन आज उसने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि वो ठीक है।
क्या मोहम्मद हुसैन को भी इस बारे में खबर नहीं?
मैं नहीं जानता।
मेहरबानी करके आप मोहम्मद हुसैन का नंबर मिलाएं।
आपको जहमत होगी हाजी साहब, फिर भी बेहतर है। ला इलाहा इल्लल्लाह।
ओहो, कैसी बू फैला दी है तुमने, अच्छी तरह से खोल दो खिड़की को।
तुम दरवाजा भी बंद कर सकते हो।
अरे वाह, तोड़ दूं अंडे को?
ना, ठहरो, पहले पक जाए तब मिर्ची डाल दो इसमें।
हाँ हाँ, तुम्हारी कुकिंग इतनी अच्छी है तो क्यों शादी करना चाहते हो?
मैं कुकिंग के लिए शादी नहीं करना चाहता।
मेरा मेहमान आ गया। देखो तुम अपना पजामा बदल लो, मेहमान के सामने हमारी बेइज्जती मत कर देना।
तुम दरवाजा बंद कर लो, मैं तो अंदर हूँ। अंदर आ जाओ, कभी आते हो कभी जाते हो।
सलामुन अलैकुम बरात अली।
सलाम हाजी साहब।
हम तुम्हें देखने के लिए तरस गए।
खुश आमदीद, तशरीफ रखिए।
या अल्लाह,
मैं अभी वापस आता हूँ।
देखिए, घरों के अंदरूनी हिस्सों के डिजाइनिंग के लिए हमने कोशिश की है कि जदीद तरीन उसूलों से काम लें, यानी वो डिजाइन जो तय हुआ है बनाया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं।
ये क्या काम था जो तुमने किया?
जब तक आप इसको देखिए, मैं अभी आपकी खिदमत में आता हूँ।
जी,
तुम जरा इधर आओ मेरे साथ। देखो, हम इस कंपनी में इलाके के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ये बात तुम समझते हो? क्या नहीं समझते हो? लिहाजा एकदम से इस पजामे के साथ मेरी बात के बीच
में तुमने मुझे फरोख्त कर दिया है।
फरोख्त का क्या मतलब है? तुम इश्तिहारी मुजरिम नहीं हो, बिलाखिर तुम्हें बैठकर बातें करनी होंगी, अपनी जिम्मेदारियां मुअय्यन करनी होंगी।
भाई साहब, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तीन दिनों से आगा साहब से मैं भागता फिर रहा हूं ताकि उनकी नजरों के सामने ना आ सकूं। अरे भाई, इस तरफ ना चलो, वो सुन लेंगे।
इस वक्त बहुत जोर आए हैं, वहां अंदर बैठे हुए हैं। बिलाखिर तुम क्या करना चाहते हो, जाओ अपनी बात कह दो।
जाओ अपनी बात कह दो ना।
मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या बात करूं।
देखो जब मैं बच्चा था तो अब्बा हुजूर की ख्वाहिश थी कि मैं भी मदरसे चले जाऊं, ठीक है?
अच्छा।
लेकिन बाद में बोले मैं नहीं चाहता जबरदस्ती मदरसे भेजूं। तुम वही काम करो जो तुम्हें पसंद है।
इससे क्या होगा?
यही ना, अब्बा हुजूर वही है जिन्होंने तुमसे कहा है मदरसे आ जाओ। कहा है या नहीं कहा है?
हाँ हाँ कहा तो है, लेकिन
माफ कीजिएगा, ये कैसी बुरी आदत है, हमेशा चीखते रहते हो, आराम से बात नहीं कर सकते क्या? तुम अब्बा हुजूर के पास जाओ, देखो तुमसे क्या कहना चाहते हैं।
मोहम्मद हुसैन, मैं उनके साथ बात नहीं कर सकता।
मत करो, जाओ। देखो अगर एक बार फिर इस पजामे के साथ मेरे सामने आए तो अच्छा नहीं होगा, जाओ बदल के आओ।
माफ कीजिएगा जनाब, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।
जी
आपने देखा नक्शे को?
हाँ मैंने देखा।
ये लो।
शुक्रिया, मैं नहीं खाऊंगा।
खाओ, इसराफ होगा।
मेरे हलक से नहीं उतरेगा आगा साहब।
तुम्हारी याद हमें सताने लगी है बरात अली, तुम्हारा साया भारी हो गया है।
ये बात मत कीजिए उस्ताद, आपका साया हमारे सरों पर रहे, मैंने सोचा आपको तकलीफ ना दूं।
दो बातें हैं कि जिनकी इस्लाम में बिल्कुल जगह नहीं है, एक मुझे क्या और दूसरी तुम्हें क्या।
उस्ताद क्या आप हमेशा ये नहीं कहते हैं कि दीन की बुनियाद प्यार मोहब्बत पर है? क्या हुजूर ने नहीं फरमाया है कि जब तक शादी नहीं करोगे तुम्हारा दीन कामिल नहीं होगा? मतलब ये कि अगर किसी ने शादी की तो उसने गुनाह किया, और क्या किसी से प्यार मोहब्बत करना भी गुनाह है?
अमामा रखवाने के लिए क्यों नहीं आए?
नहीं हो सका उस्ताद, असल बात यह है कि नहीं हो सकता। मैं इनमें से कोई भी रास्ता अपनाऊं, इनमें हर एक की अपनी कीमत है। तरजीह बिला मुरज्जो तो नहीं है, क्या है?
जहां कहीं खुदा तुम्हारा इम्तिहान करे और तुम जरा पीछे रह जाओ तो गम मत करो, यकीनन वो इम्तिहान इसलिए था कि तुम अपने नाकिस होने का एहसास कर सको, और फिर कोशिश करोगे तो इजाला किया जा सकता है। पैगंबर ने खुदा से दरख्वास्त की कि मेरी उम्मत को इम्तिहान में मुब्तला ना कर। खुदा ने फरमाया ये बात मुमकिन नहीं, इम्तिहान लेना ज़रूरी है। हुजूर ने अर्ज किया तो फिर इस तरह इम्तिहान कर कि दूसरी उम्मतें मुतवज्जे ना हों। फरमाया मैं उनका इस तरीके से इम्तिहान लूंगा कि खुद आप भी मुतवज्जे ना हों।
उस्ताद आप हमेशा कहते हैं कि किसी शय का कमाल इसमें है कि वो उस जगह पर मुस्तकर हो जाए जिसको खुदा ने उसके लिए बनाया है।
हाँ सही है, और शायद खुदा वंदे आलम अभी इस वक्त तुम्हारी जगह का तायुन कर रहा
लेकिन
है।
मैं सोचता था कि फिक्र मसाइल को हल कर देता है, मसाइल पैदा नहीं करता।
अच्छा है, तुम सही सोचते थे। फकीर को चाहिए कि लोगों को खुदा की रहमत पर उम्मीद दिलाए, ना कि उनको मायूस कर दे। बहरहाल मैं भी इसलिए यहाँ आया हूँ कि तुम्हारे सामने एक राह हल पेश करूँ।
क्या सच में उस्ताद?
शक को तर्दीद छोड़ दो, ये जरूरी नहीं है कि तुम उलमा का लिबास पहनो।
यानी मैं इस हद तक नालायक हूं?
ये नालायक ही नहीं है, हमारा मुल्क एक जरई बुहरान से दो चार है। क्या कबाहत है, क्या हर्ज है कि एक नौजवान अपनी उम्र और जिंदगी अवाम की माशी हालत बेहतर बनाने के लिए वक्फ कर दे?
लेकिन बचपन से ही हमेशा मेरी ये आरजू थी कि मैं एक मजहबी आदमी बनूं, मेरे वालिद की भी यही ख्वाहिश है।
इसके लिए जरूरी नहीं कि तुम इल्म को छोड़ दो। बाज औकात जिंदगी में हालात इस बात का बाइस बनते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी का रास्ता तब्दील कर दे।
मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए।
जाओ जायज रोजी के हुसूल में लग जाओ। जायज रोजी का हुसूल जिहाद की मानिंद है। अपने अब्बा की भी फिक्र मत करो, मैं उनसे बात कर लूंगा। बरात अली, अपने कामों में तुम सिर्फ खुदा की खुशनूदी को नजर में रखो। जब खुदा इंसान से राजी होता है तो इंसान का हाल बेहतर होता है, और फिर अच्छा है कि इंसान को खुदा की मखलूकात से लगाव पैदा हो जाता है। सिर्फ अपने तई जायजा लो, देखो खुदा इस लगाव में कहाँ है। मैं भी तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, अपने शक की भी परवाह मत करो, शक यकीन का जीना होता है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखो कि तुम कहीं उसमें उलझ कर ना रह जाओ। अब इस कमरे में पड़े रहकर अपना वक्त बर्बाद मत करो, जाओ और अपने वालिद को भी परेशान होने से बचा लो। हुँ? माफ करना बेटी, तुम्हें भी रोके रखा।
कोई बात नहीं अब्बा हुजूर।
चलो बेटी, मेरी बानी करो, जरा हाजी हबीब के घर की तरफ भी हो लेते हैं।
अब्बा हुजूर, वहां तक जाने से पहले हो सकता है कि रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए।
मुमकिन है बेटी कि अभी इसी वक्त गाड़ी के ऊपर एक आसमानी पत्थर भी आकर गिर जाए। मैंने ठीक कहा ना?
आप वहां जाना ही क्यों चाहते हैं?
मैं यहाँ तक आया हूँ कि जो काम बाकी रह गए हैं उनको अंजाम दूँ। तुम क्या सोचती हो ये रजिस्टर मैं क्यों लाया हूँ?
माफ कीजिए अब्बा हुजूर, इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं।
आज मेरे साथ बहसो जदल करने के लिए कोई अच्छा दिन नहीं है बेटी। चलो चलते हैं हाजी हबीब के घर।
जी अच्छा।
तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी।
सलामत रहे।
मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा बेटी। ये फल के बागात की आमदनी के हिसाब किताब का रजिस्टर है। 12 सालों से अब तक की पूरी आमदनी और अखराजात की तफसील भी इनमें दर्ज की गई है। बाकी मानदा मीजानिए का भी उसके आखिर में जिक्र किया गया है।
बहुत शुक्रिया, लेकिन इस काम की जरूरत नहीं है।
क्यों नहीं, जरूरी है, जरूरी है। हर काम खासकर माली उमूर में अगर निगरानी ना हो तो किसी भी वक्त कोई बदउनवानी हो सकती है। बहरहाल तुम जरा इनके ऊपर एक नज़र डाल लो। अगर तुमने रहने का फैसला किया तो एक वक्त मुकर्रर करेंगे ताकि गौर से उनका मुतालिया करो, वरना मैं तजवीज़ पेश करता हूँ कि मायदा को अपनी वकील बना दो।
अलबत्ता अभी मेरे जाने का फैसला यकीनी नहीं है।
बहरहाल अभी से ही तुम दोनों मिलकर इन रजिस्टरों का जायजा लो ताकि ये लड़की भी मसरूफ हो जाए। अगर तुम्हें कोई सवाल हो तो अहमद अली तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, माजी और मुस्तकबिल दोनों अदम हैं, हाल मौजूद है। बहरहाल दो हालतों के दरमियानी मौके को गनीमत समझना चाहिए। अब तुम दोनों चाहो तो दोस्त बन जाओ और अगर ना चाहो तो दुश्मन बनकर रहो और देखो कि तुम दुनिया के किस हिस्से को फतह कर लोगे। सिर्फ इस बीच में अल्लाह बख्शे हाजी हबीब की वसीयत का क्या बनेगा ये वाजे कर दो ताकि मुझे भी मालूम हो मुझे क्या करना पड़ेगा। खुदा तुम दोनों को अपने अमान में रखे।
मुझे तो ये हिसाब किताब समझ में नहीं आता है। तुम यहाँ हो, तुम्हें मालूम है कि मामला क्या है?
मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।
मेरे बाद तुम सब कुछ बनोगी, बेहतर है तुम इस काम की आदत करो। क्या तमाम हिसाब किताब इस रजिस्टर में है?
कहा तो है अब्बा हुजूर ने, एक एक चीज लिखी हुई है।
फिर उसके तमाम पैसे मदरसे पे खर्च किए जाते हैं?
नहीं, सिर्फ 10% मदरसे पे खर्च होते हैं, देख लीजिए।
तो बाकी पैसों का क्या होता है?
यानी आपको इतना भी हौसला नहीं है कि इनको देखें? आमदनी का ज्यादातर हिस्सा नेक कामों पे खर्च होता है। इसी तरह एक अस्पताल और एक यतीम खाना भी चल रहा है।
तो आगा साहब अपनी जिंदगी का खर्चा कहाँ से हासिल करते हैं?
अब्बा हुजूर के पास कुछ मवेशी वगैरह हैं, अपनी जिंदगी का खर्चा वो वहीं से निकालते हैं।
अब तक तुमने थप्पड़ खाया है?
नहीं,
मैंने ज्यादा खाया है। इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। इंसान को सिखाता है कि जिंदगी वैसी भी नहीं है जैसा तुम सोचते हो, सख्त दिन उसमें भी होते हैं।
अब तक मैंने किसी से थप्पड़ नहीं खाए थे, लेकिन सच पूछे तो बचपन में मेरे इतने सख्त दिन थे जिसमें मैंने सीख लिया कि किसी से उम्मीद ना रखें। मैं किसी दर्द सर के पीछे नहीं भागती हूँ, बस यही।
जरा बताओ तो, अगर मैं बीमार होती या मुझे कैंसर होता तो तुम खुश होती? अगर मैं मरीज होती तो तुम खुश होती? तुम्हें सिर्फ इस बात का गम है कि मैं चली गई, मैंने तरक्की की और मैं एक मुकाम हासिल करने में कामयाब हो गई। अगर मैं यहाँ होती और कोई मकाम हासिल ना करती तो तुम मुझसे प्यार करती?
शायद।
मुझे एक बात कहने दो, मैंने 16 बरस तक ऐसी माँ के साथ जिंदगी गुजारी है जिन्होंने इस तरीके से मेरी तरबियत की जो वो जानती थी। मैंने 24 बरस जिंदगी के बुरे दिन उस माँ की बुरी यादों के साथ गुजारे। मैं अपने तई कहती हूँ माजी और उस माँ की बुरी यादों में उलझने के बजाय अगर मैं जरा सा भी अपनी यादों के साथ जिंदगी गुजारती तो शायद मैं कुछ ज्यादा खुश होती। और अब मैं उसी घर में हूँ अपनी बेटी के साथ जो बिल्कुल मेरे उस जमाने की तरह है। तुम्हें अपनी जिंदगी के इब्तदाई 4 साल याद नहीं रहे लेकिन तुम अपने तय नहीं सोचती हो कि शायद शायद मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया होगा जिसके बारे में तुम हत्ता के सोच भी नहीं सकती हो। शायद कि जिसको दावेदार बनना चाहिए वो मैं हूं। फिर तुम फख्र के साथ मैगजीन के दफ्तर में खड़ी होकर जो तुम्हारे जी में आता है मुझसे कह देती हो। ये बातें मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि तुम मुझे मां कहो या मुझे प्यार करने लगो लेकिन तुम मेरे आज को देखो जान लो कि तुम्हारे कल का क्या होगा। आका साहब ने असली हेबानामा मुझे दिखाया है खुद अब्बू के दस्तखत उस पर थे।
अच्छा तुमने क्या कहा क्या सुना?
मैं तो उनसे इस बारे में बात नहीं कर सकी।
सच कहते हैं कि इंसानों की जब उम्र बढ़ जाती है तो मोहतात रवैया अपना लेते हैं। जब तुम जवान थी किसी चीज की ख्वाहिश करती तो जमीनों आसमान सर पर उठा लेती थी।
माफ करना तुम अकेली रह गई हुदा बहन।
हुदा खानम चाय दूं तुम्हें?
नहीं बहुत शुक्रिया।
रोजाना मेरी मदद करती हैं वर्जिश करने में लेकिन इन 2 बरसों में बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा।
ये कि फर्क पड़ा है या नहीं ये हम तुम नहीं बता सकते फिजियोथेरेपी करने वाला बताएगा। तुमने बिल आखिर एक दफा ही सही हमारी बात नहीं टाली और दस्तबरदार हो गई। अगर तुमने हाजी साहब से कह दिया होता और हंगामा खड़ा कर देती तो जब तक मैं जिंदा रहता अपने आप पर लानत भेजता रहता।
मैंने मायदा की खातिर कुछ नहीं कहा ना कि आपकी वजह से। ताहम जब मैंने मदरसा और जमीनों की कीमत का अंदाजा लगाया तो मेरी नीयत खराब होने लगी लेकिन मायदा की खातिर कुछ नहीं कहा। वो इस वक्त मोहम्मद हुसैन के साथ खुश है आगा साहब को भी चाहती है।
तुम्हारी वालदा भी कुछ बातों के बारे में सोचती थी उन्होंने भी कोई बात नहीं की थी। वो खानदानी झगड़ा पैदा नहीं करना चाहती थी।
अम्मी ने इसलिए कुछ नहीं कहा कि वो उन कामों से मुवाकिफत करती थी जो अबू अंजाम देते थे वरना जरूर मुझसे इस सिलसिले में कोई बात कहती।
बहरहाल मैंने अपना वक्त जाया कर दिया बेहतर है कि मैं जल्दी वापस चली जाऊं अपनी रिसर्च को जारी रखूं।
अपनी तहकीकात के बारे में क्या करना चाहती हो?
मुझे किसी स्पॉन्सर की तलाश करनी पड़ेगी। क्या मैं आपसे एक दरखास्त कर सकती हूं?
हाँ बोलो।
क्या आप जमीनों के मामले को आगा साहब के सामने पेश करेंगे?
कैसी बात कर रही हो हुदा खानम तुमने अपनी बेटी और दामाद के राब्ते की वजह से कोई बात नहीं की। उस वक्त हमसे जो कि उनके एहसानमंद हैं हमसे ये उम्मीद रखती हो कि उनके खिलाफ दावेदार बन जाएं।
तो आप खुद भी ये बात मानते हैं कि जमीनों के हेबा में मसला है और सिर्फ आगा साहब के एहतराम में कुछ नहीं कहते?
मैं तो इस मसले के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। तुम भी जमीनों का ख्याल अपने जहन से निकाल दो क्योंकि जब भी तुम्हारे जहन में ये ख्याल आएगा तो लालच में आके सोचोगी कि कई अरब की जमीनें यहाँ पड़ी हैं।
क्या आप लोग ये बहस बंद करेंगे? ये जो हुदा ने आगा साहब से कुछ नहीं कहा यही काफी है।
अल्लाहु अकबर
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।
अरे भाई उधर नहीं जाओ। अरे उधर मत जाओ उस तरफ जाओ। अरे उधर जाओ मैंने यहाँ नहीं कहा है। अरे मेरे भाई मैंने यहाँ नहीं कहा है हल चलाने के लिए। अरे ओ रुको मैंने कब कहा तुम्हें यहाँ हल चलाने को भले आदमी। उस तरफ जाओ मैंने कब कहा यहाँ हल चलाओ। तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हो मेरे भाई? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे देखो तो यहाँ क्या कर डाला तुमने। मैंने कहा जाओ उस तरफ तुमने यही हल चला डाला। आप ही ने तो कहा था उस तरफ चलाओ मैंने चला डाला।
अकबर साहब
क्या है
मुझे अभी क्या करना चाहिए?
तुम्हें क्या करना चाहिए था उसी रात मालूम हो गया भाई। तुम जाओ अपनी तालीम जारी रखो मैं भी एक लायक और काम का दामाद ढूंढ के लाऊंगा। तुम देख रहे हो मेरी क्या हालत है। अरे भाई मैं ऐसे दामाद का क्या करूंगा जो सुबह से रात तक पढ़ाई में ही मसरूफ रहेगा। यकीनन तुम चाहोगे कि मैं मान जाऊं लेकिन मैं मानूंगा नहीं।
अकबर साहब हकीकत यह है कि मैंने इस मौजू पर बहुत ही गौर व फिक्र किया।
क्या क्या किया तुमने?
यानी सोचा।
ये बात पहले ही बता देते। मेरे बीवी बच्चों को रोटी चाहिए मेरे अजीज उनको किताब नहीं चाहिए। और हाँ हम अपने शरई मसाइल भी खुदा का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी इतने ज्यादा हैं कि उनसे जाकर पूछ सकते हैं।
अकबर साहब मैं खेत में आकर काम करना चाहता हूँ।
अच्छा तो फिर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा?
मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगा। अकबर साहब पहले आप मेरी बात को सुन लें, उसके बाद मेरा मजाक उड़ा लीजिएगा।
देखो तुम बिल्कुल बिल्ली की तरह लग रहे हो, उसको जिस तरह भी फेंका जाए चारों हाथ पांव से नीचे गिरती है।
अकबर साहब
क्या है
ये लीजिए। मैं कह रहा था कि आप मुझे इजाजत दें अपनी महरमियत के पूरा होने तक मैं यहाँ खेतों में काम करूं और अपनी पढ़ाई भी जारी रखूं।
ये होने वाला नहीं है, इस काम के लिए मुकम्मल आदमी चाहिए जो कि तुम नहीं हो।
देखिए मुकम्मल तौर पर मैं आपकी खिदमत में रहूंगा।
लो इसे पकड़ो, अगर कामयाब नहीं हुए तो?
अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो जो आप चाहें।
तुम इतने ढीठ क्यों हो लड़के?
अकबर साहब आपको एक आदमी चाहिए जो आपके खेतों का काम कर सके। मैं भी वादा करता हूँ जो आपके खेत में काम होगा वो सारा करूंगा।
सुनो अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो क्या करोगे?
मैंने कहा ना अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो जो आप कहेंगे वो करूंगा।
अगर कामयाब नहीं हुए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, समझे?
जी
जाओ चाय पियो जाओ। तब
एक सेब को जब ऊपर आसमान की तरफ फेंकेंगे तो 100 बार घूमकर नीचे गिरेगा। इंसान के बारे में तो जाती तौर पर पेश की राय कायम नहीं की जा सकती है, मैंने खुद थोड़ी बहुत ज़रात की।
सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम।
अलैकुम सलाम। आप बजा फरमा रहे हैं आगा साहब, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इन तमाम तलबा के दरमियान में क्यों मेरे बरात अली को ही ऐसा होना चाहिए, जरा बताइए तो आप।
हमें चाहे अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, बरात अली एक लड़की को दिल दे बैठा है जिसके नतीजे में उसको शक हो गया है कि अगर तालिबे इल्मी को खैरबाद कह दे तो तुल्लाब के एक तालिब इल्म कम हो जाएगा, लेकिन अगर अपनी तालीम जारी रखे और आला मकाम पर फायज हो जाए फिर उस वक्त उसके पांव डगमगाएं तो उसको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा।
मैं जानता हूँ ये सब बातें, मैं जानता हूँ आगा साहब। इतनी उम्मीदें और आरजुएं मैंने उस नौजवान से वाबस्ता कर रखी थी, उनका क्या होगा? मैं चाहता था ये काफिले के एक आला मर्तबे का आलम दीन बन जाए, उसकी नेकियों से 4 अफराद फायदेमंद हो। मैंने खुद उससे तो नहीं कहा था, लेकिन मैं चाहता था कि वो अपनी तालीम नजफ जाकर हासिल करे, एक बड़ा आदमी बन जाए। वालेकुम सलाम। इन बातों का क्या करूँ मैं हाजी साहब?
भरोसा रखो भरोसा रखो, देखे खुदा उसके लिए क्या कर।
मैं आपके कुर्बान जाऊं। या अल्लाह।
आगा साहब आपने खुद फरमाया है कि हमें अपने नफ्स के तज़किया और तज़िया के लिए हर मौके को गनीमत समझना चाहिए। मैंने अल्लामा तबातबाई की पूरी सवानह हयात को पढ़ लिया है। उन्होंने भी अपनी जिंदगी के एक मरहले में तालीम भी जारी रखी थी और खेती भी की थी।
हाँ उन्होंने खेती बाड़ी भी की थी।
मैं मजहबी तालीम के मराहिल को तय करने के बारे में शक व तर्दीद का शिकार हो गया हूँ। आप मुझसे नाराज हो सकते हैं, मायूस हो सकते हैं, मदरसे से निकाल सकते हैं, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। क्या आप मुझे निकालना चाहते हैं?
तुम्हारा सवाल क्या है बरात अली?
आगा साहब मैंने एक फैसला किया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उस पर अमल करना चाहता हूँ। मैं तालीम को जारी रखते हुए ज़राअत भी करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को आजमाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कितने पानी में हूँ। अगर इस इम्तहान से मैं कामयाब होकर बाहर निकला तो वही बन जाऊँगा जो आप चाहते हैं।
तुम वो बनो जो खुदा चाहता है।
जी मेरा मकसद वही था।
अकबर साहब का क्या हुआ, क्या वो मान गए?
जी उन्होंने कहा है कि मैं जाकर एक मुद्दत तक खेत में काम करूं, अगर राजी हुए तो इजाजत देंगे कि मैं उनकी बेटी के साथ शादी करूं।
मदरसे का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, सिर्फ ये कि मैं तुम्हें लिबास नहीं पहना सकता हूँ।
लेकिन क्यों उस्ताद?
देखो बेटे उल्मा का लिबास ऐसा लिबास नहीं है कि आज उसको पहन लें कल जब नाकाम हो तो जिस्म से उतार फेंकें। तुम इजाजत दो कि जब तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर वाज़े हो जाएगी उस वक्त मैं अपना फैसला कर लूं।
जी जो बेहतर समझे। अगर आप इजाजत दें तो मैं कल से मदरसे में वापस आ जाऊं।
तुम मेहरबानी करके अपना पूरा सामान समेट कर घर से यहां ले आओ, वहां अब रहने की जगह नहीं है। माफ कीजिएगा आगा साहब।
ला इलाहा इल्लल्लाह।
मायदा बेगम तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुमने क्यों वेल्डिंग के अंदाजे को शीट की मोटाई के बराबर रखा है?
इसकी शीट 6 मिलीमीटर से कम है, होता है।
नए हुक्म के मुताबिक तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं है।
ये लिंक जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है इसे पढ़ लो, ये स्टील के कानून का असली नुस्खा है। फारसी नुस्खे में मुतरजिम ने गलती की है, मैंने इंजीनियरिंग सिस्टम से रब्ता किया था, कानून के आइंदा इशात से हमें इजाजत देंगे।
अरे वाह शाबाश, भेजा नहीं है कि तुम बॉस हो, जो काम कहोगे हम कर देंगे। अब तुम्हें क्या हुआ है, क्यों सोच में पड़ गई हो?
पता है मोहम्मद हुसैन, मैं मुसलसल इस सोच में पड़ी हुई हूँ कि किस तरह हो सकता है कि एक औरत इतने सालों के लिए अपनी बच्ची को छोड़कर चली जाए, और दुर्रा ये कि जब वो वापस आती है तो ये तवक्को रखे कि उसको माँ की हैसियत से कबूल किया जाए।
मेरे अब्बा हुजूर हमेशा एक अच्छी बात कहते हैं कि किसी भी कहानी को दोनों पहलुओं से देखना चाहिए। क्या तुम दोनों ने बैठकर अब तक एक दूसरे से बात की है? तुम तो आपस में लड़ती ही रहती हो। एक बार बैठकर एक दूसरे से बात करो, देखो तुम्हारी बातों में कितना वजन है। अलबत्ता जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुमको हमेशा कई लोगों पर बर्तरी हासिल है।
ओ नहीं नहीं, वो महंगा है। मैं खोलता हूं।
सलाम।
अलैकुम सलाम, फरमाइए।
सलाम।
सलाम।
आपको फातही साहिबा होना चाहिए, दुरुस्त है?
जी।
आप नोवा कंपनी की डायरेक्टर?
जी, फरमाइए।
अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हुई, मैं मकसूदी।
खुशी हुई
मुझे भी।
बहुत खुशामदीद मोहतरमा, आइए, आपकी मेहरबानी, कमरे में तशरीफ रखें, इंतजार कीजिए, मैं अभी आपकी खिदमत में आता हूँ।
जी।
ये कौन है?
ये कस्टमर है, इन्होंने दो विलाज एडवांस में खरीदे हैं, हर रोज या तो फोन करती हैं या यहाँ आ जाती हैं देखने के लिए कि हमने क्या किया है। तुम क्या करोगी? अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ।
नहीं, मैं रुक जाऊंगी, साथ चलते हैं।
ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो, सिर्फ ये है कि मुझे वर्कशॉप में भी जाना है, क्या तुम्हें वहाँ देर नहीं हो जाएगी? जाओ जल्दी करो।
अच्छा, कम से कम गाड़ी की चाबी दे दो, मैं चली जाऊंगी।
अपना ख्याल रखना।
खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
आरश, ये इंस्पेक्शन के इदारे से आई है, ध्यान रखो।
ठीक है।
मोहतरमा, लगता है आप हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी ना?
मुझे नहीं मालूम कुछ टेलीफोन कॉलों की वजह से आपकी तबीयत क्यों बिगड़ गई है। फातही साहिबा तशरीफ नहीं लाएंगी?
उनको काम था, चली गई हैं।
तो क्या वो इस कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है?
जी, लेकिन मुझे उनकी तरफ से काम के सिलसिले में मुकम्मल इख्तियार है। आपको अगर कोई मसला है तो खुद मुझसे कह दीजिए।
बहुत अच्छा। मैंने आप नुमा प्रोजेक्ट की फाइल की तमाम जुजियात का जायजा ले लिया है।
और आप समझ गए हैं कि हमारे काम में कोई कमी नहीं पाई जाती?
और मैं समझ गई कि गुलशन आबाद की जमीनों के इस्तेमाल की हैसियत को कानूनी तरीके से किसी सूरत में तब्दील नहीं किया जा सकता।
अब ये बात कहाँ से निकली है? हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स और कागजात आपको दे दिए हैं, आप उनको पढ़ सकती हैं, सब दुरुस्त हैं।
जी, ये सब दुरुस्त डॉक्यूमेंट्स और कागजात ना दुरुस्त तरीके से हासिल किए गए हैं। मैं अपने तहकीकात का नतीजा अदालत में भेज रही हूँ, वो फैसला करेंगे कि क्या करना है।
भाई, आप किस बुनियाद पर ये बात कह रही हैं?
इस बुनियाद पर कि मैंने आपकी तमाम फाइलों का जायजा लिया है, ये तब्दीली रिश्वत के जरिए अंजाम पाई है।
रिश्वत?
जी हाँ।
देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इस बीच में क्या इत्तफाक पेश आया है, लेकिन अगर कोई जुर्म भी किया गया है तो हम उसके मुर्तकिब नहीं हुए हैं, मुरादी साहब की तरफ से हुआ है। जब हमने मुरादी से जमीन खरीदी तो उसकी इस्तेमाल की हैसियत बदल चुकी थी।
आप अगर इस तरह का दावा करते हैं तो इंस्पेक्टरेट में आकर वजाहत कर सकते हैं।
मैं अपने आप को इस तरह के कामों में नहीं उलझाना चाहता, मेरे यहाँ इतने काम पड़े हुए हैं कि मैं कहीं नहीं जा सकता।
ये जो आपने अभी कहा, क्या था, धमकी?
वाहिद चीज जो नहीं थी वो धमकी थी।
आप जैसे आगाजादों की खामी यही कि आप समझते हैं कि आपके पीछे सपोर्ट हासिल है और आपको कोई नहीं ला सकता है।
देखिए मोहतरमा,
मकसूदी,
मुझे पीछे से किसी का भी सपोर्ट हासिल नहीं है।
मुझे बैतुल माल से उन आगाजादों और मुफ्तखोरों के हाथों को काटने में महारत हासिल है। इन हजरात में से आगे के केसों को मैंने खुद फाश किया है। आप मिसेस फातही से भी कह दें वजाहत के लिए इंस्पेक्टरेट में आ जाएं, मैं उनका इंतजार करूंगी। शुक्रिया।
सुनो सुनो मोहम्मद हुसैन भाई, किस बात पर इतने परेशान हैं? अरे भाई, इनमें से जो कोई भी आता है पहले वाले के पीछे पड़ जाता है। वो चार फाइलों का केस सामने खोलकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि काम कर रहे हैं।
भले आदमी, इस केस की इस वक्त महकमे में जांच हो रही है।
बहरहाल इन सब की बुनियादें एक हैं, इनमें कोई फर्क पाया नहीं जाता है।
ये खातून तीन मरतबा उठकर दफ्तर में आई हैं और दो मरतबा यहाँ उठकर आ गई हैं। अरे वो केस पर काम कर रही हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ।
उसको आना भी चाहिए, अभी महीने के शुरू में उसको अपने बॉस को रिपोर्ट पेश करनी है, तो वो क्या कहे कि मैं ऑफिस में बैठकर मक्खियां मारती हूँ? आपसे बईद है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आप इतना क्यों डरते हैं।
मुझे डरना ही चाहिए क्योंकि बीच में मेरे पांव फंसे हुए हैं।
भाई, अगर वो किसी को मुंह के बल गिराना चाहे तो वो मैं हूँ, शहीदी साहब के बेटे से किसी को कोई लेना देना नहीं है।
इत्तफाकन इसी मसले की बुनियाद पर वो जमीन को बैन करना चाहती है, ये बात समझते हैं आप?
मुझे तुम्हारा ख्याल है, अगर मैंने इस काम को यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी मैं ही ले जाऊँगा।
मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, सही सही जवाब दीजिएगा। इन जमीनों के इस्तेमाल की तब्दीली का काम रिश्वत के जरिए नहीं किया है?
तुम बच्चे हो क्या? ये सब बदनाम करने और केस बनाने के लिए है भाई। ये लोग अपनी कमजोरियों को दूसरों की बेइज्जती के जरिए छिपाना चाहते हैं। हमारे कामों के लाइसेंस में कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल कानूनी है। ये खातून भी इस केस से कुछ हासिल करने के चक्कर में है।
वो तो बिल्कुल ऐसी नहीं लगती।
किसी के माथे पे लिखा हुआ है क्या? उन्होंने देखा इस इलाके का सबसे दिलकश मंसूबा आबनुमा प्रोजेक्ट है, इसलिए वो इसके पीछे पड़ गए। तुम पूरी ताकत के साथ इस प्रोजेक्ट को जारी रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कुछ दिनों के बाद मुझे पैसा मिलने वाला है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम अपना काम करो, इनके चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें कोई काम तो नहीं मुझसे?
तो मैं मुतमईन रहूं?
मुतमईन रहो, मैं हूं ना। छोड़ो इन सबको।
Come on.